चाहत के पास श्रद्धा का कॉल आया था, निशा को होश आ गया था, इसलिए वो चाहत से मिलना चाहती थी। निशा के पास जाने से पहले चाहत ने आहान की परमिशन लेनी चाही, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। जल्दबाजी में चाहत को उसे मैसेज छोड़ना भी याद नहीं रहा और वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में आते ही श्रद्धा उसे सीधा निशा के रूम में लेकर गई। निशा की हालत अब काफी हद तक ठीक लग रही थी, हालांकि वो अभी भी उतनी ही कमजोर थी। चाहत को अपने सामने देखकर निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं चाहत भी खुश थी। वो तेज कदमों से चलकर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। निशा के गले लगते ही चाहत की आंखों में आंसू आ गए और वो भरी आवाज में बोली, अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। आपको मेरी सारी बातें माननी होगी और प्रॉपर रेस्ट करना होगा। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेवजह तुम टेंशन ले रही हो, मुझे यहाँ से जाना है। पता नहीं श्रद्धा मुझे कहाँ ले आई, तुम भी मेरी वजह से घबरा गई होगी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। निशा चाहत को सफाई देने की कोशिश कर रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि वो पिछले दो दिनों से हॉस्पिटल में बेहोश थी और साथ ही वो कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रही थी। निशा की बात सुनकर चाहत उससे अलग हुई और उसे डांटते हुए बोली, मैंने कहा ना मम्मा, मैं सब देख लूंगी और आज से हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्थ और खाने पीने से जुड़ी बातें होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे बहाने मत बनाइए, आप ठीक नहीं हैं। मुझे आप पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि आपने मुझसे सच छुपाया। बोलते हुए चाहत अपनी नज़रें फेर कर बैठ गई। निशा की आँख में आंसू थे। वो हर उस लम्हे को याद कर रही थी जब उसने चाहत के सामने खुद की बीमारी को छुपाने की कोशिश की। बहुत बार उसने अपनी खांसी में खून देखा था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर किया, सिर्फ ये सोचकर कि चाहत उसके इलाज के पैसे नहीं जुटा पाएंगी। निशा ने इधर उधर कमरे में देखा तो वो किसी होटल रूम जैसा लग रहा था। इससे वो समझ गई थी कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में है। निशा ने चाहत का चेहरा अपनी तरफ करके कहा, मैंने कहा ना बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर ठीक नहीं भी हूँ तो हो जाऊंगी। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं तुम पर बेवजह बोझ नहीं डालना चाहती, तुम पहले से ही परेशान हो। मैं नहीं हूँ परेशान, और आपके पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और मेरी कंपनी का बॉस मुझे लोन देने के लिए तैयार है। मैं उसका पैसा चुका दूंगी। अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, इसलिए आगे से हमारे बीच में इस बारे में बात नहीं होगी, चाहत ने सख्ती से कहा। निशा को लगा चाहत झूठ बोल रही है, इसलिए उसने श्रद्धा की तरफ देखा और फिर अपनी माँ पार्वती की तरफ। श्रद्धा ने हाँ में सिर हिला दिया तो वहीं पार्वती ने निशा से कहा, हमारी चाहत बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका बॉस बहुत अच्छा इंसान है, वो यहाँ पर आया भी था। उसने हमारे यहाँ रुकने का अच्छा खासा इंतजाम किया और डॉक्टर से भी बात करके गया था। देखने में ही भला इंसान लगता है। जरूर हमारी चाहत ने कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से उस जैसा इंसान देवता बनकर हमारी जिंदगी में आया। चाहत की नानी पार्वती आहान की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। जैसे जैसे वो आहान की तारीफ कर रही थी वैसे वैसे चाहत के सामने वो हर लम्हा घूम रहा था जब जब आहान ने उसके साथ गुस्से में बदतमीजी की थी। चाहत की आंखें नम होने लगी थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आंखों के कोनों को साफ किया। फिर उसने निशा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, नानी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो काफी पैसे वाले हैं और साथ ही अच्छे दिल के भी। हाँ आंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी चाहत आहान ओब्रॉय की कंपनी में काम करती है और मैंने सुना है कि वो अक्सर पर लोगों की मदद करते रहते हैं। एनजीओज वगैरह में भी बहुत डोनेशन देते हैं, श्रद्धा ने पार्वती की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। ये बात सच भी थी, पब्लिक इमेज अच्छी करने के लिए आहान अक्सर डोनेशन सेरेमनी रखवाता रहता था। उन सब की बातें सुनकर निशा को तसल्ली हुई। उसने चाहत के गाल पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, अगर आप सब कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। अब जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो बेटा अपने काम में कोई गलती मत करना। जानती हूँ कि तुम जानबूझकर नहीं करती, पर दिल लगाकर काम करना। गलती से भी उन्हें गुस्सा मत दिलाना। चाहत ने उनकी बात पर हामी भरी। नर्स तब तक खाना लेकर आ चुकी थी। चाहत ने उन सबका खाना भी वहीं पर मंगवा लिया था। सब अच्छे से बातें करते हुए खाना खाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आहान घर पर पहुंचा। आहान को उस वक्त चाहत की सख्त जरूरत थी। वो सीधा अपने कमरे में गया लेकिन चाहत वहां पर नहीं थी। आहान ने बाथरूम भी चेक किया लेकिन चाहत वहां पर भी नहीं थी। चाहत को घर पर न देखकर आहान के गुस्से में मुठियां कस गईं और वो बाहर आकर आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, डॉल कहाँ गई है, क्या कोई मुझे बताएगा? आहान के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही में काम कर रही हाउस हेल्पर दौड़कर उसके पास गई। वो औरत थी जिसने सुबह चाहत के साथ बदतमीजी से बात की थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, डॉल कहाँ गई है सूजी, और वो कब से यहाँ पर नहीं है? सूजी ने नजरें झुकाकर जवाब में कहा, उन्हें यहाँ से गई काफी टाइम हो गया है, शायद वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गई है, मैंने उनसे यही सुना था।
सूजी ने आहान को पूरी बात नहीं बताई कि चाहत जाने से पहले आहान को ढूंढ रही थी। आहान ने इशारे से उसे वहां से जाने को कहा। फिर वो रूम में आया और गहरी सांस लेकर बोला, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें डॉल। मैंने कहा था मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें इसकी इजाजत ही नहीं है। फिर भी मुझे बिना बताए तुम अपनी माँ से मिलने गई। इलाज करवा रहा हूँ ना मैं उनका, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या जो मुझे छोड़कर उनके पास चली जाती हो। अब मैं तुम्हें लाने नहीं जाऊंगा, तुम्हें खुद ही मेरे पास आना होगा। आहान ने उसी वक्त चाहत को कॉल किया। वहीं चाहत ने आहान का कॉल देखा तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव थे। उसने श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, सर का कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ अभी। रात को कौन सा काम होता है, बोल देना उन्हें कि तुम हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ रह रही हो, श्रद्धा ने सिर हिलाकर आवाज में कहा, जिसका चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से बाहर आ गई। चाहत के कॉल रिसीव करते ही सामने से आहान की सर्द आवाज आई, जहां कहीं भी हो अभी इसी वक्त घर पर आने के लिए निकल जाओ, तुम जितनी देर करोगी मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा और ये तुम पर ही निकलेगा। बहुत प्यार से मैंने कल इस रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन यू नो वॉट ऑल, जो इम्पोर्टेंस मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों बेवजह मेहनत कर रहा हूँ। तुम जिस काम के लिए मेरे साथ रह रही हो मैं वही करूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे किसी भी तरह जाकर शांत करो, इट्स योर ड्यूटी। अपनी बात कहकर आहान ने कॉल कट कर दिया। चाहत को आहान की बात सुनकर घबराहट होने लगी, उसे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था, पर चाहत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो 30 कदमों से चलकर अपनी माँ के रूम में गई और कहा, मुझे अभी जाना होगा, सर इस वक्त एक मीटिंग में है और वो फाइल ले जाना भूल गए हैं, मैंने उस पर काम किया था और लास्ट टाइम मैंने उसे रखा था, मैंने किसी और को कॉल भी किया तो वो उन्हें मिलेगी नहीं, सॉरी, पर मैं आपको कल मिलती हूँ मम्मा। बोलती हुई चाहत निशा के पास आई और उसे हल्का सा हक करके चलबाजी में वहां से निकल गई।
चाहत की बात सुनकर चाहत को भी तसल्ली हो गई कि वो सच में किसी के लिए काम करती है। आहन का घर हॉस्पिटल से काफी दूर था तो चाहत को वहां तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का टाइम लग गया था, और इस टाइम के बीच आहन ने अपना पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। चाहत घर आते ही सीधे रूम में गई। उसने देखा कमरा बिखरा हुआ था और आहन एक चाकू हाथ में लिए बैठा था। उसे देखकर चाहत बुरी तरह घबरा गई। उसने सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद किया और आहन के पास आते हुए बोली, इसे रख दीजिए आहन, आपको चोट लग सकती है। आहन ने सर्द निगाहों से चाहत की तरफ देखकर कहा, तुम्हें फर्क भी पड़ता है कि मुझे तकलीफ हो रही है? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहां से जाने के लिए, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? बोलते हुए आहन की आवाज तेज हो गई। वो मम्मा को होश आ गया था तो मैं उनसे मिलने गई थी आहन, वो बहुत बीमार हैं, उन्होंने होश में आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना चाहा, हम कभी अलग नहीं रहे। चाहत रोते हुए सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी, तभी आहन जोर से चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हारे बिना नहीं रही है तो रहने की आदत डाल ले, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, ना ही तुम्हारी मॉम के साथ और ना ही तुम्हारी किसी फ्रेंड के साथ, तुम मेरे साथ रहोगी हर वक्त, मैं तुम्हारे हर सेकंड की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है डॉल। चाहत ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। आहन ने चाकू नीचे गिरा दिया था और वो चाहत के पास आने लगा। उसने चाहत को कंधे से पकड़ा और बेड पर गिरा दिया। अगले ही पल आहन उसके ऊपर था और उसे गुस्से में किस कर रहा था। चाहत जो नहीं चाहती थी वही हो रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे और कमरे से चाहत के रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर सूजी को उसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही थी, लेकिन सब सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया। चाहत ने ये रास्ता खुद सुना था, जिसकी कीमत वो अब हर रात चुकाने वाली थी।